अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सद्गुरुदेव जी की अनुकंपा से, कृपा से, रहमत से, बख्शिश से हम लोग हर रोज उनकी तपतस तपस्या स्थली पर बैठ करके उनका जो बताया हुआ मार्ग है उसमें चलते हुए उन्हीं के उपदेशों से जो हमने श्रवण किया है, ग्रहण किया है, उसका विचार चिंतन करने की चेष्टा करते हैं। कर नहीं सकते, लेकिन उनकी आशीर्वाद हमारे ऊपर यदि हो जाए तब हम कर सकते हैं, क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम। अभी अभी बता रहे थे भगत जी ना कि गुरु की कृपा ही सबसे श्रेष्ठ है। कृपा तो चार प्रकार की सुनी है हमने, अब आत्म कृपा, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, वेद कृपा जो होती है, वो सभी कृपाएं जो हैं सभी कृपा से होता है, लेकिन उसमें से गुरु कृपा ही केवलम, केवल जो गुरु कृपा है ना, उसके बिना हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते, अपने आप उडारी लगा करके वहां नहीं जा सकते। इसलिए गुरु की महिमा वेद शास्त्र महात्मा लोग बताते हैं कि गुरु की कृपा से क्या क्या होता है, और बिना गुरु के मार्ग दिखता ही नहीं है। गुरुजी महाराज कहते हैं ना कि जे सौ चंदा उगवे है सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदियां गुरबिन घोर अंधार। भले सौ सूर्य हजार चंद्रमा प्रकाशित हो जाए, वो बाहर का जो अंधेरा है ना उसको दूर कर सकते हैं, बाहर का जो अंधकार है उसकी निवृत्ति तो कर सकते हैं जो बाहर की लाइट है। तो जब ये भी लाइट नहीं रहती, जब दिन में सूर्य होता है तब ठीक है, रात्रि को चंद्रमा होता है तो उससे प्रकाश तो जाता है, तो कई बार बिजली होती है तो बिजली से प्रकाश तो जाता है। जब ये सारे जितनी लाइट है जब इनमें से कुछ भी नहीं रहता, उसके बाद कौन सी ज्योति है, उसकी बात करते हैं ना। ये तो सभी ज्योतियाँ तो ये भी हैं, उस ज्योति का अंश मात्र ये भी ज्योति है, परंतु जब यह ज्योतियाँ नहीं रहती तब कौन सी ज्योति है। उसके बाद भी एक ज्योति है जो कभी भी अलुप्त प्रकाश है, भाव उसका प्रकाश कभी लोप नहीं होता। ये प्रकाश क्षण मात्र के लिए होते हैं, जैसे बादल में से बिजली चमकती है क्षण मात्र के लिए, और लाइट थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रहती है, लेकिन लाइट भी नित्य नहीं रहती, ये लुप्त होने वाली है। एक ऐसी ज्योति है जो अलुप्त प्रकाश है, कभी भी उसका प्रकाश लोप नहीं होता, वो ज्योति है तिसद चानन सब मह चानन होए। उसके प्रकाश से सभी जितना ब्रह्मांड है पूरा प्रकाशित हो रहा है। तस्या भाषा सर्वमिदम विभाति, श्रुति भी यही बात कहती है कि तमे भांतमनुभाति सर्वम तस्या भाषा सर्वमिदम विभाति। उसके प्रकाश से संपूर्ण जो जगत है, प्रपंच है, ये प्रकाश हो रहा है। ऐसी जो ज्योति है उस ज्योति स्वरूप को, सच्चत आनंद स्वरूप को जानना है तो गुरु की कृपा से। इसलिए कहते हैं कि गुरु के बिना अंधेरा दूर नहीं हो सकता। अंधेरा तो लाइट से भी हो जाता है, लेकिन जो अंदर का अंधेरा है, गुरु शब्द का अर्थ ही यह है, गुह शब्द तो अंधकारा स्यात रूह शब्द तन रोध का, गुह और रू दो शब्द है ना, गुह और रू। तो गुह का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करके प्रकाशित कर देता उसको गुरु कहते हैं। इसलिए गुरु की महिमा है। तो गौतम नाम अज्ञान अनेता रूप प्रकाश किया जिन चित, ऐसा भी किसी महात्मा ने कहा है। गौतम नाम वो कहते हैं गो नाम तम का है, अंधकार का है, रूप प्रकाश रू नाम प्रकाश का है। इसलिए गुरु जो हमारे अंधकार को, अविद्या को, अज्ञान को नष्ट करके, हमारे भ्रम को, हमारे अध्यास को निवृत्त करके हमारे स्वरूप का प्रकाश कर देते हैं, साक्षात्कार देते हैं, उनको गुरु कहते हैं। ऐसे गुरु की कृपा केवलम, कृपा मतलब उनका प्रसाद, उनकी प्रसन्नता जब मिलती है तो तभी हमारे का मार्ग जो हमारा प्रशस्त होता है, स्वच्छ होता है, उज्ज्वल होता है, तो हमारे को मार्ग का पता चलता है। मार्ग तो बहुत हैं संसार में चलने वाले तो, लेकिन ऐसा कहते हैं शास्त्रकार कि महाजनो येन गता सापंथा, ये शास्त्र का नियम है कि महाजनो येन गता, संसार के मार्ग तो बहुत हैं परंतु जिस मार्ग से महाजनो गता, जिस मार्ग से तत्ववेता लोग चले हैं सापंथा, असली वो पंथ है, वो रास्ता है जिस मार्ग पर महात्मा लोग चलते हैं। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवड़ भा की पाए, यही कहा ना गुरु महाराज ने, संत का मार्ग क्या है, धर्म की पौड़ी। संत का जो मार्ग है ना, जिसके ऊपर संत लोग चलते हैं, वो मार्ग है मोक्ष का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, भाव सागर से पार होने का मार्ग। उस मार्ग पर, उस छत पर चढ़ने के लिए, ऐसा जो छत है ना मोक्ष रूपी छत है, उसको पहुंचने के लिए धर्म की पौड़ी, छत के ऊपर पहुंचने के लिए पौड़ी चाहिए, सीढ़ी चाहिए। तो वहां कौन सी है, धर्म की पौड़ी, अथा तो धर्म जिज्ञासा। ये पूर्व मीमांसा का सूत्र है, यहां से शुरू होता है पूर्व मीमांसा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। जब ये पूर्व मीमांसा कर्मकांड, कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा हमारा माल और विक्षेप चला जाता है, तो फिर ब्रह्म सूत्र कहाँ से शुरू होता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। सबसे पहले है अथा तो धर्म जिज्ञासा, पूर्व मीमांसा जहाँ से शुरू होता है कि धर्म को जानना चाहिए, धर्म क्या चीज है। धर्म तो बहुत प्रकार की व्याख्या धर्म की होती है, तो पहले हमारे को धर्म पकड़ना पड़ेगा। धर्म क्या चीज है, जिसको धारण किया जाता है उसको धर्म कहते हैं मोटी परिभाषा में। धर्म की तो बहुत व्याख्या लंबी की थी शास्त्रकारों ने की है, लेकिन ध्रियते इति धर्मः, जिसको धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं। तो धारण हम क्या करते हैं, कर्म में हमारा धर्म होता है। जिस कर्म को हम मन से कर्ता समझ के करते हैं वो धर्म हो जाता है। वैसे तो कर्म हम करते रहते हैं पूरा दिन, धर्म नहीं बनता वो जब उसको केवल कर्म भ्रम से चिन्ह, धर्म करो अनुरागो, ऐसा कहा है, पढ़ा है ना आपने, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का ये वचन है कि केवल कर्म भ्रम से चिन्ह। जो केवल कर्म है ना, बिना भक्ति के, बिना निष्ठा के, विश्वास से, वो कभी धर्म नहीं बनता, वो उसको कभी धर्म नहीं कहते। कर्म तो हम पूरा दिन करते रहते हैं लेकिन विश्वास से, निष्ठा से नहीं करते हैं। जैसे हम जहाँ श्रवण करते रहते हैं, जब हमारी उसमें निष्ठा, विश्वास, जैसे अभी आपको बता रहे थे कि जब हमारा उसमें विश्वास होता है ना कि जो करता है वो ही करता है, जो कराता है वो ही करता है, ऐसा विश्वास होता है, तब वो धर्म बनता है। जब धर्म की हमारे को सीढ़ी मिल जाएगी तो फिर संत का मार्ग मिल जाएगा। धर्म की सीढ़ी के ऊपर सवार हो जाएंगे ना जब, तो फिर संत का मार्ग, धर्म की पौड़ी। लेकिन सभी के वश की बात नहीं है, महाराज जी कहते कोवड़ भाग्य पाए, सभी नहीं उसको प्राप्त कर सकते। कोई बड़े भाग्य वाला, बिना भाग्य के संतों का सत्संग ही नहीं मिलता। पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, पेट्यो पुरख रसक बैरागी, ऐसा कहते हैं कि जब पूर्वले अच्छे जो कर्म हैं हमारे किए हुए, जब वो पुण्य उनका उदय होता है फल देने के लिए, अंकुरित निकलता है ना, अंकुरित होते हैं वो कर्म, तो फिर जो बैरागी है, जो तत्ववेत्ता है, महापुरुष सतगुरु, उनके साथ हमारी भेंट होती है, उनसे हमारा मिलाप होता है। तो फिर जब मिलाप होता है तो उनकी जब कृपा हमारे ऊपर बरसती है तो फिर क्या होता है, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक। जब मिल जाते हैं ना गुरु लोग, सतगुरु से हमारा मिलाप होता है, उनके चरणों में उनकी शरण में हम जाते हैं, तो जा करके जब प्रार्थना करते हैं कि सतगुरु आयो शरण तुम्हारी, हे सतगुरु मैं आपकी शरण में आया हूँ। शरण में किस लिए आया हूँ, जैसे कहते हैं जिज्ञासु का जब लक्षण किया है ना, तो कहते हैं कि वो शरण में एक बार हमने महापुरुषों से प्रार्थना की बनारस में कि हमारे को आप कृपा करके कुछ बताइए। एक हमारे बहुत मतलब वहाँ निष्ठावान तत्ववेत्ता महात्मा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं बनारस में, उनको हमने कहा कि महाराज जी हमारे ऊपर कृपा करो। वो कहते हैं कृपा तो आपके ऊपर है। हमने कहा कौन सी, वो कहते पंडितों की। वो कहते हैं कि पंडितों से आप पंचमी सप्तमी पहले लगा लो जितनी देर लगानी है। जो हम व्याकरण पढ़ते हैं ना, ये पंचमी है, ये सप्तमी है, ये षष्ठी है, विभक्ति पढ़ते हैं ना, वो कहते हैं कृपा तो आपके ऊपर है पंडितों की। तो हमने कहा कैसे, कहते पंचमी सप्तमी लगा लो जब तक लगानी है पंडितों से, उसके बाद हमारे पास आना। साजिदानंद जी महाराज को जानते हैं ना, आपने दर्शन किया नहीं है, किया होगा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हैं, कभी कभी दर्शन होता उनका। वो कहते हैं कि आप पंचमी सप्तमी पहले लगा लो। तो हमने कहा इसका मतलब मारा हम समझे नहीं। वो कहते हैं कि जब तक किसी को ये रहता है ना विश्वास कि मेरा रोग ठीक हो ही जाएगा, मेरी कैंसर हट ही जाएगी, मेरी जो शुगर है हट ही जाएगी, तब तक वो दवाई खाने की कोशिश करता है। जब डॉक्टर कहता है कि अब तेरे हार्ट का ऑपरेशन होगा नहीं तो तुम बच नहीं सकते, पहले तो कोशिश करता है ना कि मेरे को ऑपरेशन ना कराना पड़े, ऐसे दवाई से काम चल जाए। लेकिन जब डॉक्टर बोल देता है कि अब सर्जरी करेंगे तो आप बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बच सकते, तब फिर कहता है कि जल्दी करो मेरी, जितनी जल्दी हो हार्ट की सर्जरी करो मेरी। वो कहते हैं अभी आप लोगों की नौबत सर्जरी तक नहीं पहुंची, यही कहा उन्होंने कि अभी आप पंडितों से पढ़ना चाहते हैं, अनेक प्रकार की पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, अभी पढ़िए, जिस दिन आप सर्जरी तक पहुंच जाएंगे ना तब हम ऑपरेशन आपका कर देंगे। हम तो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हैं, हम दूसरी दवाई दे के काम नहीं चलाते हैं। लेकिन जब मरीज की नौबत पहुंचे, जब मरीज आकर के गिड़गड़ाए कि अब मेरा बिना सर्जरी के नहीं चलता, तभी तो सर्जरी करेगा ना डॉक्टर, ऐसे नहीं करता। इसलिए बात ये होती है कि अभी हमारी नौबत वहां तक पहुंची ही नहीं। कहते तो हम लोग हैं कि ये हमारे को समझा दो, ये समझा दो, वो सुना दो, ये सुना दो, लेकिन उतने सुन करके ही हम लोग प्रसन्न हैं कि इतने से हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि जैसे कह रहे थे भगत जी कि अब जहां मानो बैठते हैं ना घंटा, तो उस घंटे में थोड़ा सा आनंद रहता, थोड़ा सा आनंद रहता है, बाहर की बातें नहीं सुनते तो लगता है कि यही ठीक है। लेकिन ऐसे ठीक थोड़ी होगा, कह तो रहे थे कि ऐसे ठीक नहीं होगा। सुन लिया आपने भी उपकरण बन जाओ, तो उपकरण सुन लिया तो उतने से मजा आता कि पता नहीं हम उपकरण हो ही गए, होए थोड़ी हैं। इसलिए उतने उतने आनंद से हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कोई हमारे को विषय प्राप्त होता ना, थोड़ी देर के लिए उस विषय को लेकर के तो आनंद हो जाता, लगता इसी में सुख है, और थोड़ी देर बाद में वही दुखी करता है, तब फिर दूसरे को पकड़ते हैं। हम उस आनंद को चाहते हैं जो आनंद कभी ना जाए। लेकिन चाहने की हमारी जो स्थान है, हमारा देश है, वो सही नहीं है। आनंद की चाह तो हमारी सही है, बिल्कुल चाहते तो हम आनंदी हैं, लेकिन वो आनंद मिलेगा कहाँ से, वो हमारा लेने वाला जो स्थान है वो ठीक नहीं है। चाह हमारी सही है, ये भी कहते हैं महापुरुष की जो हर प्राणी की इच्छा है ना कि मेरे को आनंद चाहिए, वो इस बात का प्रमाण है कि वो ऐसा आनंद नहीं चाहता कि जो चले जाए। आम लोगों की भी ये जिज्ञासा होती कि मेरे को सुख चाहिए, लेकिन ऐसा सुख जो कभी जाए ना, तो ऐसा सुख कहाँ, पदार्थों में थोड़ी है। जो वही घूमा तत् सुख मनाल पे सुख मस्ती, जो ऐसा सुख है वो ब्रह्म है। उसके इतर जो सुख हैं वो विषय के सुख हैं, विषय के जो विषय की प्राप्ति से सुख मिलता है, वो जब तक विषय है तब तक है। कहते हैं जैसे एक रागी होता ना बाजा बजाने वाला, जब उसको कोई सुनता है तो कहता कि बहुत आनंद आया, आपको सुनने से हमारे को शांति आ गई, आपको सुनने से हम स्वस्थ हो गए थोड़ी देर के लिए। तो कहते हैं यदि बाजे में शोक होता तो रागी खुद बीमार है। रागी को जब वो कीर्तन करके उठता तो वो पूछो आप, वो दुनिया भर की बीमारी गिनाता है वो। यदि उस बाजे में शोक होता तो रागी सुख ना हो, सुखी ना हो जाता। आपको लग रहा है ना उसकी ट्यून सुनने से, हमारा कान का हमारा विषय है शब्द, इसलिए जब शब्द काटता है ना कान में तो तब थोड़ी देर के लिए कान को विषय मिल गया तो स्थिति हो जाती है। लेकिन यदि विषय में सुख होता, वाजे में सुख होता ना, या शब्द में सुख होता तो रागी ना सुखी हो जाता, उसका तो रोग ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब विषय में सुख नहीं है। कोई भी विषय हम भोगते हैं तो भोगने के बाद में तो हमारे पास में रहता है, जब विषय में सुख होता तो विषय तो हमारे सामने रहता, फिर उससे हम दुखी क्यों होते हैं। इसका मतलब है कि विषय में सुख है नहीं है, विषय में सुखा आभास है, सुख की छाया पड़ती है उसमें, लगता है कि विषय में सुख है। वही विषय हमारे पास में रहता है लेकिन सुखी नहीं करता, उसको हम देखना तक नहीं चाहते। इसका मतलब है कि वो विषय में सुख नहीं है, सुख तो हमारा अपना है। लेकिन ऐसा होता है कि जब विषय हमारे पास में आता है तो हमारी वृत्ति कुछ देर के लिए स्थित हो जाती है। तो जब स्थित होती है ना तो उसमें हमारा ही जो प्रतिबिंब है उसका अनुभव होता है, जो हमारे अंदर प्रतिबिंब है ना ब्रह्म का, उसी का अनुभव होता है। जब वो जैसे पानी जब ठहर जाता है ना पानी, तो सूर्य का प्रतिबिंब भी हिलने से रुक जाता है। जब पानी हिलता रहता है तो सूर्य भी ऐसे ऐसे करता रहता है। तो इसी प्रकार हमारी जो वृत्ति है, जो हमारी वृत्ति है जब स्थित होती है ना, तो उसमें जो हमारे अंदर प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब का अनुभव होता है थोड़ी देर के लिए, तब हमारे को उस सुख की अनुभूति होती है। वो जो सुख है उस सुख को हम सदैव चाहते हैं कि हमारे को ऐसा सुख मिला ही रहे, जाए नहीं कभी, लेकिन चले जाता है क्योंकि हमने ढूंढा कहाँ है, विषय में ढूंढा है, तो विषय में है नहीं सुख। इसलिए जो आनंद हम चाहते हैं वो मिलता है गुरु की शरण में जा करके। जो मार्ग हमारे को चाहिए उस मार्ग का बताने वाला मार्गदृष्टा कौन है? संत महापुरुष हैं। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवड भागी पाए, कोट जन्म के किल बिख नासे, हार चरणी चित लाए। जो संतों का मार्ग है ना, उस मार्ग के लिए धर्म की पौड़ी है, धर्म की सीढ़ी है। महाजनो जैन गता सा पंथा, वो पंथ है, वो रास्ता है। लेकिन कोई बड़े भाग्य वाला प्राप्त करता है, जब कोई प्राप्त कर लेता है तो उसको क्या होता है, कोट जन्म के किल बिखना से, एक जन्म के नहीं कोटि कोटि जन्म के जो पाप हैं, किल विश का अर्थ है पाप, उसके पापों की निवृत्ति हो जाती है। धर्म उसको जब प्राप्त होता ना, धर्म का अर्थ है कि उसको कर्म का पता चल जाता है कि कर्म कैसे करना चाहिए, कौन सा कर्म करने से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी। जब अंतःकरण की शुद्धि होती है तो कोटि जन्म के, जो करोड़ों जन्म के केलबिश थे ना पाप, उनकी निवृत्ति होती है। कोटि जन्म के केलबिख नासे, तो फिर हर चरणी चित लाए। जो हरि है ना, प्रभु है, परमात्मा है, उसके चरणों में अनुराग होता है, प्रेम होता है। क्योंकि इस बात को तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि बिन सतसंग न हरि कथा, तेह बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद हुए न दृढ़ अनुराग। जब तक सतसंग नहीं मिलता तो हरि की कथा नहीं मिलती, जब हरि की कथा नहीं जब तक मिलती तो मोह की निवृत्ति नहीं होती। तो जब तक मोह की निवृत्ति नहीं होती तब तक प्रभु के चरणों में अनुराग नहीं होता, प्रेम नहीं होता, और जब तक प्रेम नहीं होता तब तक हरि मिलता नहीं है। क्योंकि जो प्रेमी होता है ना उसको प्रियतम मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता, प्रेमी को ही प्रियतम की प्राप्ति होती है। तो जब तक हम प्रेमी नहीं बनते तब तक प्रियतम मिलेगा कैसे हमारे को। तो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, स्वामी जी आगे उनको लेके आ। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्होंने प्रेम किया है उन्होंने ही प्रभु का अर्थ उन्होंने प्रीतम को पाया है। इसलिए जिस मार्ग पे हम चलना चाहते हैं, जिस मार्ग को हम पकड़ना चाहते हैं, उस मार्ग के दृष्टा कौन है? महात्मा। महात्माओं से मिलता है वो मार्ग। तो चेष्टा तो हम करते हैं हर रोज, महापुरुखों की कृपा से चेष्टा करते हैं कि हमारे को वो मार्ग मिल जाए। नीचे कर दे। तो जब उस मार्ग को ढूंढने चलेंगे ना तो संतों से मिलेगा वो मार्ग। मने मग न चले पंथ, मने मग न चले पंथ। तो जो पंथ है, जो मार्ग है ना, उस मार्ग को पकड़ने के लिए धर्म की पौड़ी है। धर्म की पौड़ी जब पकड़ेंगे तो संतों का मार्ग मिलेगा। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। कोविड भागी पाए, कोट जन्म के किल बिख नासे, हर चरणी चितनाए। फिर कह दे उस्तत करो सदा प्रभ अपनी, जन पूरी कल राखी। उस प्रभु की स्तुति करो, उस प्रभु का चिंतन करो। ये भी एक भक्ति की बात है, जो प्रभु का चिंतन करने की बात आती है ना, ये भी सरगुण सगुण भक्ति में है, ज्ञान में नहीं है। जब हम भक्ति करते हैं तब हमारे को द्वैत में ही होती है भक्ति, अद्वैत में भक्ति नहीं होती है। क्योंकि सेवक स्वामी भाव मान के भक्ति होती है। जब हम चिंतन करते हैं तो कोई हमारा स्वामी चाहिए, उसी का, उसके गुणों का चिंतन करेंगे ना। जब हम अपना चिंतन करेंगे तब हमारे को ज्ञाता ज्ञान गे वाला भाव मिटाना पड़ेगा, तब त्रिपुटी नहीं रहेगी ना। त्रिपुटी रहेगी तो फिर त्रिपुटी खुले चौथा पद चीने, हमारा जी कहते हैं। त्रिपुटी जब तक है, त्रिपुटी संध में पेखिया घट हूँ घट जागी, ये भी बात कही। त्रिपुटी की जो संधि होती है ना, त्रिपुटी की संधि होती है, उसके वो जो समय है ना, वो हमारा अपना आप है। त्रिपुटी का जहाँ अभाव होता है ना, एक त्रिपुटी है किसी विषय के साथ हमारा संबंध हो रहा है, एक विषय है, एक विषयी है, एक जिसके द्वारा हम देखते हैं, दर्शन है, दृश्य है और दृष्टा है, तीन बातें होती है ना। तो जब वो त्रिपुटी का अभाव होता है, एक विषय से हमारा मन हटा तो क्षण मात्र के लिए अभाव होता है त्रिपुटी का, उसके बाद दूसरी त्रिपुटी शुरू होती है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि त्रिकुटी संधि में पेख्या, वो जो संधि है ना बीच वाली, एक त्रिकुटी समाप्त तो हुई, दूसरी अभी चालू नहीं हुई, बीच में अभाव है, वो हमारा अपना आप है। क्योंकि त्रिपुटी के अभाव में अपने आप को देखना है ना। हम तो त्रिपुटी में तो हम देखते ही हैं, लेकिन त्रिपुटी में तो तीन चीजें रहती है। जब त्रिपुटी समाप्त होती है उसमें अपने आप को देखना है। तो कहते हैं कि त्रिकुटी संध में पेखिया घट हूँ घट जागी। जो त्रिकुटी की संधि में अपने आप को मैंने देखा ना, जब वो जो मेरा अपना आप है उसका जब मैं अनुभव किया तो घट हूँ घट जागी। ऐसी बुद्ध समाचरी, ऐसी जो बुद्धि है मेरी ना, उसका जब विस्तार हुआ, घट घट में हर जू बसे वाली जब बुद्धि मेरी आई ना, त्रिकुटी संधि में अपने आप को जब मैंने देखा, तब मेरे को पता चला कि जब मैं त्रिकुटी है तब भी मैं हूँ, जब त्रिकुटी नहीं है तब भी मैं हूँ, अभाव में मैं रहता हूँ। बात तो वही है जो विचार चंद्रोदय में कहा है, उतनी बात में सब निकल जाता है। त्रिकुटी संध में पेखिया, महाराज जी कहते हैं त्रिकुटी संध में पेखिया। जो त्रिपुटी की संधि है ना, उसके अंदर मैंने अपने आप को जब देखा, घट हूँ घट जागी, घट घट के अंतर मेरी जो बुद्धि है ना, मेरी जाग गई भी घट घट में मैं हूँ। ऐसी बुद्ध समाचरी, घट माहे त्यागी, तब मैंने अपने आप को जाना कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, नहीं तो पता ही नहीं चलता। गुरु महाराज जी कहते हैं तू कौन, कहाँ ते आयो, अरे भाई तू कौन है, कहां से आया है, कभी आपने कहते विचार किया है? एति न जानो, तुम इतना भी नहीं जानते? अरे तू कौन, कहां से आयो? ये गुरु महाराज की पंक्ति है गुरबाणी की, तू कौन है और कहां से आया है। एति न जानो केतिक मुदत, कहते कितनी मुदतें बीत गई है, कितनी शताब्दी बीत गई है, तेरे को इतना भी नहीं मालूम कि तुम कौन हो, चलते खबर ना पायो, कितनी देर से तू चलता आ रहा है, तेरे को इतनी खबर भी नहीं है कि मैं कौन हूं। सबका ज्ञान इकट्ठा हम कर लेते हैं कि फलां कौन है, ये कौन है, वो कौन है, ये कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है, लेकिन अपना नहीं कभी भी पता हमारे को कि हम कौन है और कहाँ रहते हैं। बताते तो हम ही हैं लोगों को कि मैं फलाना हूँ और फलानी जगह रहता हूँ, लेकिन वो जो हम परिचय देते झूठा है वो। हम अपना परिचय कभी किसी को नहीं दिया, नकली परिचय देते हैं जिसको भी देते हैं, क्योंकि पूछने वाला भी नकली है, बताने वाला भी नकली है। पूछने वाला पूछता है कि आप कौन हैं, तो हम किसका नाम बताते हैं, शरीर का, अपना थोड़ी बताते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहते ना फ्रॉड है, तो फ्रॉड हुए कि नहीं हम? जो झूठा परिचय देता है उसको फ्रॉड कहते हैं लोग, तो हम तो उसी को आधार कार्ड मान के बता रहे हैं। आधार कार्ड किसका, इसी का, शरीर का, कि मैं फलाने का पुत्र हूं, फलाना हूं, तो हम शरीर का परिचय दे रहे हैं झूठा। यदि कोई पूछता कि तुम कहाँ रहते हो, तो किसका पता देते हैं, घर का, तो हम घर थोड़ी हैं, ना हम घर हैं और ना हम शरीर हैं, तो या तो हम शरीर का पता देते हैं या घर का पता देते हैं, तो दोनों झूठे, दोनों में से आप नहीं मिलेंगे। जो कोई लेना चाहे, आपको ढूंढना चाहे, तो दोनों में आप नहीं है। शरीर को लेके आप करे को कोई क्या करेगा, शरीर तो मुर्दा भी आपका है, उसको कोई चाहेगा ले जाए? जब शरीर मुर्दा हो गया तो उसको कौन लेगा, कोई नहीं चाहता उसको, तो मुर्दे शरीर का ही तो हम परिचय दे रहे हैं ना। हमारे को भले मालूम नहीं है कि जो मुर्दा है, लेकिन है तो मुर्दा, मुर्दा मतलब जो हुआ ही नहीं है, ही नहीं, जो ही मुर्दा है ना, तो हम मुर्दे का पता देते हैं दूसरे को, चेतन का नहीं देते हैं, क्योंकि चेतन का हमारे को खुद मालूम नहीं है ना। कई बार जब हम कहते हैं, जैसे हमने मोबाइल नंबर लिया है नया नया, तो कई बार कोई पूछता है कि आपका मोबाइल नंबर कितना, तो आप कहते हैं मेरे को खुद मालूम नहीं अभी, तब बताएंगे तेरे को जब मेरे को मालूम होगा। तो हमारा परिचय कोई पूछता है तो हम कभी ये नहीं कहते कि मेरे को अपना मालूम नहीं है, जब मेरे को मालूम होगा तब मैं आपको बताऊंगा, कभी नहीं कहा हमने, तुरंत बताते हैं कि मैं ऐसा, मैं ये हूँ, मैं राम सिंह हूँ, मैं फलाना सिंह हूँ। तो पता किसका दिया, शरीर का, झूठा। हमारा अपने को खुद मालूम नहीं तो हम बताएंगे कैसे? तो जो महात्मा होते तत्ववेत्ता ना, उनको मालूम रहता है कि मैं कौन हूं, इसलिए वो अपना, अपने को जो बताते हैं असली पता बताते हैं वो। जब वो अपना असली पता बताते हैं तो हम मानते नहीं, क्योंकि हमारे को स्वभाव बन चुका है ना कि जो सामने दिखता है उसका पता बताओ। महात्मा उसका नहीं बताते, वो बताते हैं असली, तो उसको हम नकली मानते हैं, कहते ऐसा नहीं हो सकता, कहते हैं ना तुम ऐसे नहीं हो सकते। महात्मा कहेंगे मैं सच्चिदानंद हूँ, तो आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे को इसी का परिचय लेने का स्वभाव बना हुआ है ना। तो महात्मा तो असली पता बताएंगे। आप महात्मा से पूछिए, जो ऐसा पूछते हैं ना कि आप ठीक हैं, ऐसा पूछते हैं लोग, महात्मा से ऐसा नहीं पूछते लोग, ना महात्मा ही आपसे ऐसा पूछेंगे। वो कहेंगे आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप ठीक हैं, ऐसा नहीं पूछते, क्योंकि आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। महात्मा एक दूसरे से कभी नहीं ऐसा कहते कि तुम ठीक हो, कहते आपका स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब शरीर आपका ठीक है। महात्मा क्या गलत है या आप गलत हैं? तो परिचय ही हमारा प्रश्न गलत होता है कि आप ठीक हैं, आप गलत हैं। कोई ठीक गलत वाली बात तो शरीर में हो सकती है ना, जो बना होता है वो बिगड़ता है, उसमें कुछ फर्क पड़ता है? जो बना ही नहीं वो बिगड़ेगा कहाँ से, उसमें ठीक गलत कहाँ से आएगा? ठीक का या गलत का प्रश्न जिस पे आता है ना, वो मानो कभी नित्य नहीं होता, कभी भी नित्य नहीं होगा। जिसके ऊपर भी ठीक का या गलत की चिन्ह लग जाए ना संसार में, वो कभी नित्य नहीं हो सकता। जो नित्य है उसमें ठीक गलत का चिन्ह कभी लग नहीं सकता। जिसके ऊपर भी संसार की क्या ब्रह्मांड की किसी वस्तु पर ठीक गलत का चिन्ह लग जाए वो नित्य नहीं हो सकती। तो हम लोग तो ठीक गलत वाले को ही पहचानते हैं, या तो ठीक रूप में पहचानेंगे या गलत में पहचानेंगे, और गलत को हम ठीक करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन जो ठीक गलत से परे है उसको कौन पहचानेगा। जो ये बताता है कि ये ठीक है कि गलत है वो अलग है। तो हमारा परिचय जो है ना वो महात्मा लोग बताते हैं, क्योंकि उनको अपना परिचय मालूम है कि मैं कौन हूं, इसलिए वो बताते हैं कि तुम जीव नहीं हो। वो कहते हैं तुम कौन हो, तत्त्वमसि। वो तो ये बताते हैं कि तत्त्वमसि, तू ब्रह्म है। गुरु महाराज भी कहते हैं कि सो प्रभ दूर नाही, प्रभ तू है। वो कहते हैं प्रभु कोई तेरे से अलग नहीं है, तू ही प्रभु है। तो उन्होंने तो तू कहा है ना, तू जब तक रहेगा तब तक भी द्वैत है। तू के साथ, तू के भीतर मैं जो है घुसा हुआ है, तू के भीतर मैं घुसा हुआ है, समझ गए ना। जब हम किसी को तू कहते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, मैं अलग हूं, तभी तो कहते हैं ना तू। तो तू के अंदर भी मैं है। जैसे कबीर जी ने कहा भाई, तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, पहले हूं था ना मैं हूं, मैं मतलब शरीर को लेकर के था, मैं हूं मतलब शरीर करके मैं हूं। जब फिर तू तू कहने लगा तो मैं उसके अंदर चला गया, मैं उसी में समाहित हो गया, फिर मुझ में रहा ना हूं। शरीर को लेकर के जो अहम था, कबीर साहब कहते वो नहीं रहा, अब पहले था, अब तू तू कहने से मैं का जो था ना अहम अहम जा था वो चला गया। तो फिर क्या हमारी स्थिति हो गई, तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जब आपा पर का मिट गया तो जत देखा तत तू, इसका मतलब क्या हुआ, मैं जो अहम अहम लेकर के शरीर को इंद्रियों को अंतःकरण को था ना वो बड़ा हूं चला गया, लेकिन जब तक तू है ना तू, तो मैं अलग जरूर रहता है। या तो मैं बिल्कुल समाहित हो जाए तू ही बचे तब भी ठीक है, या एक क्योंकि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैं यार तोर तो मैं यार मोर तोर तय माया, ऐसी माया है जिन्हें सारे जीवों को अपने वश में कर रखा है। तो हम परिचय जब पूछने जाते हैं महात्माओं से तो उनसे परिचय संसार का पूछते हैं, कभी भी हमने अपना परिचय नहीं पूछा। महात्माओं से भी यही पूछते हैं कि मेरे को ये बता दो, मेरे को वो बता दो, मेरे को ऐसे बता दो, लेकिन अपने लिए कभी नहीं हमने पूछा कि आप महाराज मेरे को बताइए कि मैं कौन हूँ। जब जाएंगे तो प्रश्न करते हैं कि महाराज मेरे को, महात्मा कहेंगे भी आपको क्या चाहिए, कहते मेरे को बाहर जाना है, मेरे को बाहर जाना है। तो महात्मा कहते हैं कि हम बाहर किसी को भेजते नहीं, हम तो कहते अंदर को जाओ। महात्मा बाहर नहीं किसी को भेजते, वो तो कहते हैं बाहर से अंदर आओ, लेकिन हमारा प्रश्न होता है कि महाराज जी मैंने बाहर जाना है, तो वो कहते हैं बाहर जाना तो वो तो हमारे पास दवाई नहीं है, बाहर तो भेजने वाले एजेंट बहुत हैं आपको, हम तो अंदर भेजते हैं। कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि महात्मा को कि महाराज जी मेरे को अंदर भेज दो, कहते मेरे को बाहर जाना है। तो बाहर जाने के लिए तो एजेंट घूमते फिरते संसार में बहुत, किसी से भी कहो पैसा दो और बाहर चले जाओ, अंदर जाने के लिए कोई नहीं आपको कहेगा कि अंदर जाओ, क्योंकि अंदर को हम जाना नहीं चाहते, अंदर से हमारे को भय लगता है। ये बात उपनिषद में कहते हैं ना, उपनिषद में कहा है कि प्राण चिखानी व्यतरणत संभु तस्मान प्राण पश्यति न अंतरात्मन। जो हमारी इंद्रिय है ना, इनका स्वभाव जो ब्रह्मा ने बहिर्मुख कर दिया, इनकी हत्या कर दी, इनको बना दिया, इसलिए तस्मात प्रांग पश्यति, इसलिए बाहर को देखती है ना अंतरात्मन, अंदर को नहीं देखती। उनका स्वभाव ही ऐसा बना दिया ब्रह्मा ने जब बनाया कि वो आत्मा की तरफ घूम करके देखती ही नहीं है, बाहर को देखती है। तो जब बाहर देखती है तो बाहर वो मिलेगा नहीं जो हमारे को चाहिए, क्योंकि सब किस भर घर में बाहर ना ही बाहर टोले सो भरम भुलाही। जो बाहर देखेगा बाहर मिलेगा नहीं कहीं, इसलिए हमारे को जब अंदर अपने आप को देखना है तब हमारे को महात्माओं के पास जाना पड़ेगा, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। जो बुद्धि हमारे को, जो अंतःकरण, जो ब्रह्माकार वृत्ति हमारे को चाहिए वो मिलेगी गुरु से। गुरु महाराज जी कहते हैं कि गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। गुर बिन सुरत ना सद, गुरु बिन मुक्त ना पावे। गुरु के बिना श्रुति नहीं मिलती, सिद्धि नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। गुर कर सच विचार, गुरु कर मन मेरे। गुरु ले करके गुरु की शरण में जा करके गुरु को पूछ करके विचार करके ऐसी बुद्धि हमारे को प्राप्त होती है जिसके द्वारा आत्मचिंतन हम कर सकते हैं। वह सूक्ष्म बुद्धि होती है, सूक्ष्म, मोटी बुद्धि से नहीं होता। बुद्धि जो हमारी तीखी हो जाए, तीक्ष्ण हो जाए, सूक्ष्म हो जाए। सूक्ष्म का मतलब है कि उसमें से जो मलिनता है ना वो निकल जाए, साफ हो जाए, तो उसके अंदर फिर प्रकाश होता है, तब हमारी वृत्ति ब्रह्माकार होती है, तब हमारे को दर्शन होगा। तो इसलिए विचार चल रही है हमारी कि सकल दृश्य सो अध्यास छोड़ना, जग आधार में चित्त जोड़ना, और त्रयदशा ही जागृत आदि जो हैं सब प्रपंच सो भिन्न ना ही हैं। ये विचार चली थी कि जो तीन अवस्थाएं हैं ना वो सारा प्रपंच उनके भीतर है, उनसे अलग कोई प्रपंच नाम की चीज नहीं है, तीन अवस्था रूपी प्रपंच है। इसलिए जितना मतलब शास्त्रकार बताते हैं ना वो सब तीन गुणों की ही बात बताते हैं शास्त्र, क्योंकि सारा संसार तीन गुणों के अंदर है ना, तीन से बाहर कुछ है ही नहीं है। जो कुछ भी प्रपंच दिखाई पड़ता है वो तीन गुणों में ही है, क्योंकि इसी का नाम माया है। गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि राजगुण तमगुण सतगुण कही है एह तेरी सब माया, चौथे पद को जो नर चीने तिन ही परम पद पाया। ये तो तीन कहते तेरी माया है, जो इनको चीनता है, इनको खोजना चाहता है वो चौथे पद को नहीं पा सकता। चौथा का अर्थ है जो इन तीनों से विलक्षण है, तीनों से अलग है, इसलिए उसको चौथा कहा। वैसे चौथा कुछ नहीं है, वो तीनों से विलक्षण होने से समझाने के लिए तीन की अपेक्षा से चौथा है। वो वही लिख सकता है जिसने इन तीनों को जाना नहीं है, तीनों से परे हो गया। जो ये तीन गुणा जो है ना इनके अंदर मिलने खोजने से संसार तो मिलेगा, लेकिन जो चौथा है ना वो तीनों से ऊपर जाकर के तुरिया अवस्था सतगुर ते हर जान, तुरिया अवस्था जो है ना वो सतगुर से प्राप्त होती है, गुरुओं से प्राप्त होती है, तुरिया चौथा पद। इसलिए उस पद को हम पाने के लिए हमारे कोई शास्त्र हैं। तो ये विचार चली थी कि त्रयदशा ही जो जागृत आदि हैं सब प्रपंच सो भिन्न ना ही हैं, सारा प्रपंच इन तीनों के अंदर ही आता है। कैसे है ये बात, ये चली कि तीन जो अवस्था है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये ब्रह्म में कैसे भासती हैं। ब्रह्म तो हमारे को सुना मात्र है, लेकिन तीन अवस्था में तो हम घूमते रहते हैं, हर रोज घूमते हैं। तीन अवस्थाओं में हर रोज हर प्राणी घूमता है, जागृत में स्वप्न में जाता है, स्वप्न में से सुषुप्ति में जाता है, फिर सुषुप्ति में से स्वप्न में आता है, स्वप्न में से फिर जागृत में आता है। हम लोग हर रोज चक्कर लगाते हैं हम तीनों में से, लेकिन ये सोचने की बात है कि हमारे अंदर ये तीन अवस्थाएं हैं, हम इनके अंदर हैं, ये हमारे अंदर है, लेकिन इनके अंदर होते हुए भी हम लोग इनके रहने के बगैर भी रहते हैं। जब जागृत अवस्था होती है ना उस समय स्वप्न और सुषुप्ति नहीं रहती, लेकिन जागृत में हम हैं। जब स्वप्न अवस्था आती है उस समय जागृत नहीं है, ना सुषुप्ति है, लेकिन स्वप्न में हम हैं। जब सुषुप्ति आती है तो उस समय जागृत नहीं है, स्वप्न नहीं है, लेकिन हम तो हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों अवस्थाओं को आपस में अभाव है, एक दूसरे के साथ नहीं रहती हैं। जब एक रहेगी तो दो नहीं रहेंगी, इसमें से कोई भी रहे, एक रहेगी तो दो नहीं रहेगी, लेकिन हम तो सभी में हैं। जब एक रहती है तब भी हम रहते हैं, जब दूसरी रहती है तब भी रहते हैं, तीसरी रहती है तब भी रहते हैं। इनका आपस में अभाव है, व्यतिरेक है, और हमारे साथ भी अभाव है, हमारे साथ भी नहीं रहती है और आपस में भी नहीं रहती। तो हम कैसे हैं, हम इनके साथ रहते हैं, हमारा अनुस्यूतता है इसमें, हमारी व्यापकता है, हम रहते हैं तीनों में, इसलिए ये हमारे में क्या है, भासती है ना, केवल है नहीं है। क्योंकि यदि ये सत्य होती ना तो तीनों कालों में रहती ना, ये तीनों कालों में नहीं रहती है, तीनों कालों में कहाँ रहती है, ये तो वर्तमान में ही रहती है ना, वर्तमान में रहती है, ना भूत में रहती है ना भविष्य में रहेगी, ये वर्तमान में ही हमारे को कोई भी अवस्था का अनुभव होगा वर्तमान में ही होगा, ना पहले था ना बाद में रहता है। तो हम तो पहले भी थे बाद में भी रहते हैं, मतलब जब ये अवस्था का अभाव होता तब भी हम रहते हैं, जब ये अवस्था नहीं आती तब भी रहते हैं। तो इसलिए ये हमारे में मिथ्या है नहीं। तो प्रपंच भी इन्हीं का स्वरूप है ना, प्रपंच मतलब जितना जे नाम रूपात्मक दिखने वाला ब्रह्मांड मान लो उसको, या तीन लोक मान लो, या 14 लोक मान लो, ये सब जितना पसारा है ना, ये सब तीन अवस्था रूप है, इससे भिन्न कुछ नहीं है। तो तीन अवस्था को ग्रंथकारों ने कहता ये तीन भ्रांतियां हैं, ये तीन भ्रम है, तीन अध्यास हैं, ये कुछ नहीं है। अध्यास का मतलब होता है कि मिथ्या वस्तु और मिथ्या वस्तु का ज्ञान, उसको अध्यास कहते हैं। तो ये हमारे में केवल भ्रांति मात्र है नहीं है, भ्रम है। आगे उसको दृष्टांत से बताते हैं कि रजतादि है सीपी में यथा, सीपी आपने देखी कि नहीं देखी, कहाँ देखी है, समुद्र के किनारे पड़ी होती है छोटी छोटी, जैसे शंख होते हैं ना, शंख भी समुद्र में से निकलते हैं, सीपी लेकिन वो त्रिकोणी होती है, तीन कोण वाली होती है, और उसके पीछे से वो नीली होती है, नील रंग की होती है, उसका जो पीठ है ना पीछे वाली नीली सी चमकती है, और तीन कोण वाली होती है, आगे से खुली होती है वो। तो ऐसी जो सीपी है ना, कहीं समुद्र के किनारे रेता पर पड़ी होती है ना, तो उस सीपी में हमारे को चांदी का भ्रम होता है, जैसे चांदी होती है ना सफेद दिशकती है, ऐसे वो भी जब ऐसे पड़ी होती है, उसकी पीठ जब है, वो पीठ हमारे को नहीं दिखती, बीच वाला पासा दिखता है, तो बीच में से वो चांदी की तरह होती है, लिशकती है, दूर से चमकती है। तो हम लोग भाग के जाते हैं कि वहां चांदी का टुकड़ा पड़ा है, लेकिन जब पास में जाएंगे तो जाकर के देखते हैं कि ये चांदी नहीं है। एक बार तो हमारे को भ्रम होता ना, या तो चांदी का भ्रम होता है, या फिर एक चांदी वर्ग का कागज होता है, जैसे मिठाई ऊपर नहीं लगा होता, उसको चांदी का वर्ग कह देते हैं, लगा होता ना चांदी वर्ग, तो या तो उसमें हमारे को चांदी का भ्रम हो जाता है, या उस कागज का भ्रम होता है, या अभ्रक होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है भाव चांदी की तरह, उसमें हमारे को भ्रम होता है। ये कहते हैं कि रजतादि जैसे उसमें भासते हैं ना सीपी में, वो कब भासते हैं हमारे को, जब तक हमारे को सीपी का विशेष ज्ञान नहीं होता। सामान्य ज्ञान तो है कि वो कोई वस्तु पड़ी है, लेकिन सामान्य ज्ञान था, विशेष ज्ञान नहीं था, तो उसमें से हमारे को भ्रम हो गया, क्योंकि उसके जैसी हमने चांदी पहले देखी थी कहीं। जब हमारी वृत्ति निकलती है ना उसको देखने के लिए, तो उसके आकार की नहीं बन पाती, जैसी वो सीपी है ना ऐसे आकार की हमारी वृत्ति नहीं बनी, निकली थी वहाँ देखने के लिए, तो उसमें से जब नहीं बनी तो साथ में जो हमारे अंदर विक्षेप है ना उसने चांदी बना दी, उसमें चांदी थी नहीं, उसमें हमारे अंदर चंचलता थी, विक्षेप मतलब चंचलता, हमारा मन स्थिर नहीं है, हमारा मन जो है वो स्थिर क्यों नहीं है, उसमें संकल्प विकल्प है भी, ये क्या पड़ा है। तो जो सिमरण था वो ही आ गया, तो इसलिए हो गया कि हो सकता चांदी पड़ी हो, हमारे को भ्रम हो गया ना उसमें। तो जब हम जा करके पास में देखेंगे उसको पता चलेगा ये सीपी है, तो फिर चांदी का भ्रम नहीं रहेगा। जब तक हम नहीं देखते जा करके तब तक हमारे को भ्रम रहता है। ये कहते हैं कि रजत आदि है सीपी में यथा, जिस प्रकार सीपी में या मरुस्थल में जो जल है, या रात को एक टूटा हुआ वृक्ष खड़ा है तो उसमें हमारे को लगता है कि कोई आदमी खड़ा है, होता है ना कभी कभी कि आगे कोई खड़ा है, या पास में जा करके देखते हैं तो कुछ भी नहीं है, कोई वृक्ष खड़ा है टूटा हुआ, दूर से लगता है कि कुछ पता नहीं कोई आदमी खड़ा है कि वृक्ष खड़ा, पता नहीं चलता, पास में जाएंगे तब पता चलेगा। या कोई लोग कहते हैं कि इस वृक्ष पर भूत रहता है, ये भी होता ना हमारे को, लोग कहते हैं कि इसके ये जो पीपल है ना इसमें भूत रहता है, तो भूत का भ्रम हो जाता है ना पीपल पर, होता नहीं है। लेकिन जब तक वो भूत का भ्रम नहीं निकलता तब तक उसकी तरफ हम जाते ही नहीं, उस रास्ते ही नहीं जाते। जो हमारे शमशान घाट होते हैं ना गांव में, उधर कोई कोई रात को कहे कि उधर से जाओ आप, कभी नहीं जाएंगे आप, क्योंकि मन में बैठा कि जितने आदमी मरे हैं वहां हैं भूत बन के बैठे हैं, यही होता है ना, तो कभी हम उधर नहीं जाते। जब कोई निकालेगा कि वहां भूतवा तो कोई नहीं है, तब हम वहां जा करके बैठ भी जाते हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन जब तक भ्रम रहता है तब तक उधर नहीं जाते, होता कुछ नहीं है, लेकिन हमारे मन की जो कल्पना ना संकल्प है उसी ने भूत बनाया है, हमारे मन ने ही उसमें सीपी में चांदी बनाई है, चांदी नहीं है कहीं भी। लेकिन जब तक हमारे को सीपी का विशेष ज्ञान नहीं ना होता, जब तक रस्सी का हमारे को रस्सी रूप में ज्ञान नहीं होता, तब तक उसमें सर्प भासता है। जब हम जान जाएंगे कि रस्सी है तब हमारे को सर्प का भ्रम निवृत्त होगा। तो सर्प का भ्रम होता कब है? जब हम कहते हैं कि ये कुछ पड़ा है, हमारे को है रूप में रस्सी का केवल है पना है, सामान्य रूप से ज्ञान है ये कोई पड़ा है, तो उसमें जब है के साथ में हमारी जो अविद्या है ना, हमारी चंचलता है, उसने खड़ा किया है सर्प, सर्प उसने खड़ा किया, सर्प की हमारे अंदर स्मृति थी, इसी को अध्यास कहते हैं। स्मृति रूपा पूर्व दृष्टाव भाषा अध्यासा, ये शंकराचार्य मारे कहते हैं स्मृति रूपा पूर्व दृष्टा अवभाषा अध्यासा। अध्यास किसको वो कहते हैं कि स्मृति रूपा, अध्यास क्या है? स्मृति रूप है, स्मृति मतलब जो पहले हमने अनुभव किया है उसकी याद, उसको स्मृति कहते हैं। पहले हमने सर्प कहीं देखा था तो उसकी स्मृति है हमारे अंदर, पूर्व दृष्टा, पूर्व हमने देखा जो उसकी स्मृति रूप जो अभ्यास है उसको अध्यास कहते हैं। पहले सर्प देखा था कहीं, उसकी स्मृति हो गई, तो उसके जैसा कोई पदार्थ पड़ा था तो हमने कहा सर्प पड़ा है। इसलिए ये कहते हैं कि रजतादि जैसे सीपी में भासते हैं ना, रजत है, कागज है, अभ्रक है, या फिर स्थाणु में ठूठ में पुरुष का, पुरुष का होता है, जहाँ जैसे पानी है ना, पानी उसमें उल्टा दिखता है, पानी के किनारे कोई वृक्ष होता है तो उल्टा दिखता है कि नहीं, देखा कभी पानी के किनारे जो वृक्ष होते हैं उनको देखो आप, उनकी जड़ें ऊपर दिखती है और ऊपर का जो उसकी शाखाएं नीचे दिखती है, उल्टा दिखता है, हम ही खड़े होते हैं तो उल्टा दिखते हैं, पुरुष भी उसमें उल्टा दिखता है पानी में, तो वो क्या है? ऐसा थोड़ी हुआ है, वृक्ष तो जैसा है बाहर वैसे ही खड़ा है। या हम नौका में बैठे होते हैं तो घूमते दिखते हैं कि नहीं, नौका चल रही है ना तो बाहर के वृक्ष जो हैं घूमते दिखते हैं, ऐसे गाड़ी में भी होता है, ट्रेन में विशेष करके होता है, ट्रेन में जब आप बैठे होंगे तब देखना, जिस ट्रेन में हम बैठे हैं ना वो ट्रेन खड़ी है, पास वाली चल रही है, तो क्या क्या लगता है? लगता हमारे वाली चल रही है, या हमारे वाली चलती है तो वो खड़ी है, लगता वो चल रही है। जब ध्यान से बाहर निकल के देखेंगे तब पता चलता है, नहीं तो ऐसा भ्रम हो जाता है। हम लोगों ने तो बहुत देखा, हम तो देखते ही रहते हैं, जब भी ट्रेन में बैठते हैं ये अनुभव जरूर करते हैं, लेकिन हम लोगों को भी भ्रम होता है, लगता नहीं है, फिर किसी से पूछते हो कहते नहीं आपकी नहीं चल रही, वो चल रही है, वहाँ अनुभव हो जाता है इस बात का। तो वो क्या है, भ्रम है ना, वो हुआ तो कुछ नहीं, वो शीशे, जो शीशा है ना बीच में, उसी की करामात है, वो शीशे से सब कुछ हो रहा है लेकिन हमारे को सत्य लगता है। वो ये कहते हैं कि रजत आदि है सीपी में यथा, जिस प्रकार रजत आदि भासते हैं, आदि से अभ्रक लेना, कागज लेना, और आदि से दूसरे दृष्टांत भी ले लेना, जैसे गंधर्व नगर होता है, गंधर्व नगर समझते हैं, जो बादलों में दिखता ना, बादलों में एक नगरी बनी होती है, गांव जैसा नहीं होता बादलों में बना हुआ, जहाँ हरिचंद की नगरी भी उसको बोलते हैं, और जब बादलों में बना हुआ दिखता है वो क्या होता है, उसको लिए महाराज जी कहते हैं, गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते हैं कि यह जग धुएं का पहार, तय साचा माने के है विचार, कहते तुम किस बात से इसको सत्य मानते हो, ये तो धुएं का बना हुआ पहाड़ है, कभी धुएं का पहाड़ भी सत्य होता है, जब धुआं निकलता है ऊपर जाता है तो पहाड़ों जैसा हो जाता है ना, है तो कुछ भी नहीं, तय साचा माने के है विचार, जैसा सपना रैन का तैसा संसार, ये रैन के सपने की तरह संसार है, लेकिन तुम सात मानते हो इनको, सत्य मानते हो। तो ये कहते हैं कि रजत आदि सीपी में जथा, रजत आदि है ना जिस प्रकार सीपी में, उसी प्रकार त्रयदशा सु हैं ब्रह्म में तथा, उसी प्रकार जो तीन अवस्था है ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सीपी में तीन भास रहे हैं ना, या तो चांदी भास रही है, या कागज भास रहा है, या एक चांदी जैसा पदार्थ अभ्रक होता है वो भास रहा है, रांगा भी बोलते उसको, रांगा ऐसा भी होता है वो, मतलब तीन चीजें उसमें भासती है, तो तीन यहां भास रही हैं, और तीनें उसमें सत्य नहीं है ना, केवल सीपी सत्य है ना, वो कहां सत्य है, जब तक सीपी का ज्ञान नहीं तब तक तीन अलग अलग भासती हैं, और तीन में से भी एक भासेगी तो दूसरी दो नहीं भासेगी, जब चांदी का भ्रम होगा तो अभ्रक का नहीं होगा, कागज का नहीं होगा, जब कागज का होगा तो उन दोनों का नहीं होगा, वो आपस में भी उनका व्यतिरेक है, अभाव है, और सीपी के साथ भी अभाव है, सीपी में भी नहीं हो, सीपी में ना व्यवहार काल में है ना परमार्थमिक में है, कहते हैं सीपी में उनका व्यवहार और परमार्थ से अत्यंता अभाव है ही नहीं, अत्यंता का अर्थ तीनों कालों में ही नहीं है, उसको अत्यंता अभाव कहते हैं, सीपी में चांदी तीनों कालों में ही नहीं है, कभी भी नहीं है, सीपी की चांदी को लेकर के आप बेच नहीं सकते, कहीं व्यवहार नहीं कर सकते ना कि सीपी को चांदी के भाव कहीं बेच दो आप, होगा ऐसा कभी नहीं होगा, तो व्यवहार भी नहीं है और पारमार्थिक तो है ही नहीं है, ना तो उसकी पारमार्थिक सत्ता है ना व्यवहारिक सत्ता है, केवल प्रातिभासिक सत्ता है, प्रातिभासिक मतलब प्रतीति होती है नहीं है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि ये जो तीन दशा है ना, तीन अवस्था है, ये ब्रह्म में है नहीं है, ब्रह्म तो एक है और सत्य है और सब में है, उसी के कारण ही सारा ब्रह्मांड और तीनों दशा जो है ना, तीनों अवस्था ये भी उसी के द्वारा प्रकाशित होती है, उसी के लिए कल भी हमने विचार किया था कि इसलिए कहते हैं कि हम जागे नहीं अभी तक, उत्तिष्ठत जागृत प्रत्यवरान निबोधत, तू जाकर के महात्माओं के पास पूछ, परंतु दुर्गस पथक तदकवयो वदंती, महात्मा लोग कहते हैं कि ये मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि लगता तो है इसमें चरना बहुत कठिन है, खन्ने हो तिखी वालो हो निक्की एत मार्ग जाना, खन्ने हो तिखी वालो हो निक्की, खंडा जो होता ना खंडा समझते ना, खंडा जो लगा होता है निशान साहब के ऊपर, वो दोनों तरफ से तीखा होता है, खन्ने हो तिखी उन्हों कहते हैं, खंडे से भी तीखी भाव दोनों तरफ से तीखी है, बाल हो निकी बाल से भी ब्रीक है वो, एत मार्ग जाना, गुरप्रसादी जिन्हें आप तजया, जाएगा कौन वहां, जिन्होंने गुरु की प्रसाद से गुरु की कृपा से आप तजया अपने आप को छोड़ा है, अपने आप को कहते छोड़ा है, अपने आप को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, बात तो वहां ही आ जाती है। अपने आप को छोड़ा जिन्होंने गुरु की कृपा से, वो जो मैंने पहले बताया कि गुरु की कृपा से अपने नकली भाव को छोड़ा जिन्होंने, जो गलत परिचय देते थे ना अपना, उस गलत परिचय को छोड़ता जिन्होंने, अब वो गलत परिचय किसी को नहीं देते अपना। ये नहीं कहते कि मैं ये हूँ, फलाना सिंह हूँ, या मैं राम कुमार श्याम कुमार, नहीं बताते। जब कोई पूछता जिज्ञासु तो उसको कहते हैं मैं सच्चिदानंद हूँ, गुरप्रसादी जिन्हें आप तजा हर वासना समाणी। जो हरि की वृत्ति रूप वासना है ना उसमें समा गए वो। वासना समाणी का मतलब क्या है, वासनाएं समाप्त हो गई, जो संसार की वासनाएं थी वो सब समाप्त हो गई, अभी उनकी एक ही वासना बची है, हरि में समाहित हो जाएंगे। समाप्त तो अभी हो जाएगी अंत में, अभी नहीं हुई, अभी गुरु की कृपा से उनको हरि में मिलने की वासना उनके अंदर आई है, जिज्ञासा कि हरि को मिलना हमने, इसलिए उनके लिए कहते हैं गुरु अमरदास महाराज जी के भक्तों की चाल निराली, भक्तों की चाल ही निराली है। कहते थे ना किसी का पता नहीं चलता, मैंने भी कहा था कि लक्षणों से पता नहीं चलता, लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं चाल निराली, उनकी चाल ही निराली होती है। केवल उनकी चाल जो है अंतरीव नहीं, बाहर की चाल से भी पता चल जाता, चाल मतलब उनका आचरण, चाल से केवल चलना नहीं होता। वहां महाराज जी का कहने का तात्पर्य है कि भक्तों की चाल मतलब भक्तों का आचरण निराला है, उनका करैक्टर जो है ना, करैक्टर उनका हाव भाव उसी से, वो भी निराला है, दुनिया से अलग है। भक्तों की चाल निराली, चाला निराली भक्तां केरी, क्यों उनका आचरण कठिन है अलग है, विकम मार्ग चलना, क्योंकि वो कठिन रास्ते पर चलते हैं, इसलिए उनका आचरण लोगों से अलग है। लोगों वाला आचरण करना हो तो बहुत कठिन नहीं है, क्या कठिन है, जुआ खेलने बैठना है, ताश खेलने बैठना है, सिनेमा देखने जाना है, बाजार में घूमने जाना, तो कौन सा कठिन है, कोई कठिन थोड़ी है, वो तो सब जगह मिलता, कहीं भी बैठ जाओ खेलने वाले बहुत मिलते हैं, हंसने वाले बहुत मिलते हैं, खाने के लिए पदार्थ बहुत मिलते हैं, तो वो कठिन नहीं है, इसीलिए उनका आचरण उनकी चाल निराली है दुनिया से। क्योंकि विकम मार्ग चलना, लाभ लोभ अहंकार ताज तृष्णा, बहुत ना ही बोलना, यही तो कठिन है, लाभ लोभ अहंकार ये सारा ताज, इनको सबको छोड़ना है ना उनको, विषयान विषवत त्यज, यहां से शुरू करते हैं ना अष्टावक्र कि मुक्ति चेत सीतात, यदि तेरे को हे तात मुक्ति चाहिए तो विषयान विषवत त्यज। तो वही तो बात गुरु अमरदास जी कहते हैं कि लाभ लोभ अहंकार ताज इनको छोड़ दे, साथ में किसको छोड़, तृष्णा, लाभ की तृष्णा, लोभ की तृष्णा, अहंकार की तृष्णा, ताज तो बहुत ना ही बोलना, ज्यादा बोलना भी नहीं है, बोलना ही तब तक होता है जब तक अज्ञान है, जब अज्ञान नहीं रहता तो बोलना भी समाप्त हो जाता है। गुरु महाराज जी कहते हैं इस बात को कि समझ परी तो बिसरियो गावन, ये बात कहते हैं ना महाराज जी कि जब समझ पड़ गई तो गौना ही बिसर गया, भाव बोलना समाप्त हो गया, बोलेगा कहाँ। कहते हैं ना बात बात इस बात को कहते हैं कि जब संत मिले किस सुनिए कही है, मिले असंत मस्त कर रही है। जब कोई जिज्ञासु मिल जाए, सखी मिल जाए अपनी विचार करने वाली, तो किस कहिए सुनिए, तो जब कोई असंत मिल जाए तो मस्त कर रही है, क्योंकि संतन से बोले उपकारी, जो संतों के साथ बोलता है, संतों के साथ वचन करता है, किन संतों के साथ जो उपकारी होते हैं, उपकार करते हैं, वो संत बोलेगा तो उपकार के लिए बोलेगा, मूर्ख से बोले चख मारी, कहते चखा मारता है ये, तू बकवास करता है, चख का अर्थ क्या है, बकवास, व्यर्थ का बोलना। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि वहाँ उनकी चाल इसलिए निराली है कि लाभ लोभ अहंकार तसतना बहुत ना ही बोलना। आगे जाकर के तीजी पंक्ति है, खन्यो तिखी वालों ने किए तो मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिन्नी आप तजिया हर वासना समाणी, कहे नानक चाल भगता जुगो जुग निराली। इसलिए एक युग की बात नहीं, भक्तों की चाल तो हर युग में निराली होती है। वह संसार से अलग होकर के चलते हैं भक्त, कैसे निराली होती है इसमें तो बहुत दृष्टांत, एक थोड़ी होती है। आप प्रहलाद का दृष्टांत ले लो तो निराली है चाल की नहीं। उनके पिता कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे को मानो। जब वो पढ़ने जाते हैं तो उनके जो टीचर है ना, दो संडा और मरका, वो क्या पढ़ाते हैं, वो तो उनकी उनके पिताजी का नाम रटाते हैं, लेकिन वो राम कहे कर ताल बजावे चटिया सबे बिगारे। गुरु महाराज कहते हैं कि राम कहे कर ताल बजावे, संडा मरका उसको कहते हैं कि तुम अपने पिता का नाम जपो, जले हरनाक्ष थले हरनाक्ष, सब जगह हरनाक्ष ही है। वो कहते हैं गुरु महाराज कि प्रहलाद कैसा है, भगतां की चाल कैसे निराली है, राम कह कर ताल बजावे, और राम राम कह करके ताल बजाता ताली बजाता है, चटिया सबे बिगारे। कहते कला ही बिगड़ा नहीं है, चटिया कहते हैं जितने चाटड़े हैं, प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाटड़े बिगाड़े, एक कला नहीं कहते बिगड़ा हुआ हो, सभी जितने विद्यार्थी सबको बिगाड़ दिया, सबको कहा बस मेरे साथ में राम राम का जाप करो। तो क्या है चाल निराली है कि नहीं उनकी, चटिया सबे बिगारे, राम कहे कर ताल बजावे, संडा मरका सब जाए पुकारे, हमारा कहया ना सुने। कहते हैं जा करके ये हमारी बात नहीं मानता। उसकी माता ने भी कहा कि तुम राम राम मत कहो। वो कहते कि यदि ये कहती है ना तुम राम मत कहो, जैसे कबीर जी कहते थे ऐसे उन्होंने भी कहा। वो कहते ना हो तेरा पुंगड़ा ना तू मेरी माए, पुंगड़ा नहीं मैं तेरा बच्चा नहीं हूँ, ना तू मेरी माँ है, क्योंकि तू मेरे को राम कहने से रोकती है, जो मेरे को राम कहने से रोकती है मेरी माँ ही नहीं है। तो सबसे निराली चाल होगी ना उनकी, माता को नहीं मानते, पिता को नहीं मानते, गुरु की नहीं मानते, जो पढ़ाने वाले उनकी नहीं मानते वो, तो चाल तो अपने आप निराली होगी, क्योंकि उनको मार्ग का पता है ना किस मार्ग में हमने जाना है। ऐसा मार्ग जो है वो संतों से मिलता है। आज प्रवचन ही चल रहा है, विचार नहीं चल रहा, विचार तो इसी के साथ ही चल रहा है कि ये कठिन बहुत है। आज इतना ही हमने विचार किया है कि तीन जो दशा है ना ब्रह्म में इस प्रकार है, जिस प्रकार सीपी में चांदी है जहाँ अभ्रक है जहाँ कागज भासता है। तो इसलिए धीरे धीरे जब विचार करेंगे ना पद्धति से तो जरूर लगेगा। स्वामी जी कहते थे कि इसी के साथ मिला के बोलना है, तो बात तो एक ही चल रही है, किसी भी ग्रंथ से आप उठा लो ना बात वही चलती है। जो भी कोई ग्रंथकार उठाते हैं ना, गुरु महाराज जी ने हमारे को खजाना इतना दिया है ना बड़ा, कि सभी शास्त्रों का निचोड़ दिया है महाराज जी ने, हमारे ऊपर विशेष परोपकार किया, पंजाब के लोगों के ऊपर जो शास्त्र नहीं पढ़ सकते वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन इतने पर भी संतोष नहीं किया गुरु महाराज जी ने। एक बात आपको और बताते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का खजाना दिया हमारे को, पर उनको संतोष नहीं हुआ, उनको मालूम था, मालूम था ना उनको कि लोग इस पर भी संतोष नहीं करेंगे। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया कि पांच अपने शिष्यों को बनारस में पढ़ने भेजा। जब पहले तो खजाना दे दिया था सब निकाल के, तो फिर दसवें जामे में जाकर के क्या सोचना पड़ा कि नहीं अभी बात बनेगी नहीं, इन लोगों को संशय रहेगा कि हमारे को हो सकता वेद में क्या लिखा हो, श्रुति में क्या लिखा हो, स्मृति में क्या लिखा हो, ये लोग कहेंगे कि यहाँ महाराज ने बोल दिया, और जैसे लोग कहते हैं कि स्मृति में ये लिखा है वेद झूठा बोलते हैं, वेद में ये लिखा है। तो उन्होंने पांच अपने शिष्यों को बनारस में पढ़ने भेज दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने, कि वहाँ की सारी विद्या इकट्ठी करके ले आओ, तब बताओ कि ये गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखा है ये सही है। तो वो निर्मल परंपरा उसको बोलते हैं, निर्मल संप्रदाय, निर्मले संतों को महाराज जी ने बनारस में पढ़ने भेजा था। स्वयं उनको भगवे कपड़े अपने हाथ से दिए थे, जो हमने पहन रखे ना ऐसे कपड़े अपने हाथ से रंग के मारे ने उनको दिए थे और हाथ में चिप्पी दे करके उनको आशीर्वाद दे करके बनारस में भेजा। कब भेजा था? 1723 विक्रमी में भेजा था, 1723 में भेजा था, 1686 में भेजा था महाराज जी ने, इसलिए कि इनकी जो शंकाएं हैं उनको रहे ना। तो उसी परंपरा से हम लोग हैं, जिन पांचों को भेजा था ना वही निर्मल संप्रदाय में से महाराज जी हैं, उसी संप्रदाय में से हम हैं। उन लोगों ने 12 साल लाए थे बनारस में, हमने 15 लगाए हैं। जिनको महाराज ने भेजा था ना उन्होंने 12 साल लगाए थे, और जो हमारे महाराज जी हैं श्रीमंत जी महाराज, उन्होंने 16-17 साल 20 साल लगाए हैं बनारस में, हमने 15 लगाए हैं। तो महाराज जी जहाँ हम लोग उसी परंपरा में से हैं, कहने का भाव है कि हम लोगों को गुरु महाराज जी ने संपूर्ण विद्या दी है, गुरु ग्रंथ साहब की विद्या दी है, साथ में शास्त्र की भी दी है, कि कहीं से भी आपको शंका हो तो उसका समाधान आप गुरुओं से पूछ के करो। ऐसे महाराज लोगों के चरणों में रहेंगे ना तो बहुत कुछ मिलेगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।